सबक के शुरू में मैंने आपको ये थीम दिया था कि आज हम ये देखेंगे कि निफाक कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्या हालात होते हैं। पीछे भी बहुत जगह तस्करा आया है, आगे भी आएगा, लेकिन इस जगह नाम लेकर अल्लाह ताला ने मुनाफकत के क्या रंग होते हैं उसका तस्करा किया है। आइए देखते हैं आयत नंबर 67 से। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे में से हैं। एक दूसरे से क्या मतलब, ये उर्दू में जैसे आप कह लें सारे मुनाफिकों का आपस में गठजोड़ है, अंदर से सब एक है, इनका दिल आपस में बहुत लगता है, ये कह लें इन सब का मिजाज एक है, इनके मशगले एक ही जैसे हैं, इनकी चॉइस एक जैसी है, ये जिन जगहों पे जाते आते हैं वो सब एक ही जगह की चीज़ें हैं, इनको एक ही जैसा लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, ऐसे लोग ऐसे काम कर करा के अपने आप को कामयाब समझते हैं। चलो ठीक है, ये अपने आप को कामयाब समझते हैं तो समझते रहे। और यहाँ एक और छोटा सा भी इसका एंगल आप अपने जहन में नोट कर लीजिए कि मुनाफिकों का दिल मुनाफिकों में ही लगता है, इनको निफाक भरी महफिलें और वो सारी एक्टिविटीज लुभाती हैं, अच्छी लगती हैं। क्या करते हैं? नंबर एक, यामुरून बिल मुनकर, ये बदी का हुक्म देते हैं। नंबर दो, वयनहौन अनिल मारूफ, और नेकी से रोकते हैं। और नंबर तीन, वयक्बिदून अईदियहुम, और अपने हाथों को बंद रखते हैं। किससे बंद रखते हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से। इनके साथ होगा क्या? नंबर एक, नसुल्लाहा, चूंकि इन्होंने अल्लाह को बुला दिया, ये चौथी सिफत थी इनकी। पहली या मरूना बिल मुनकर, दूसरी यनहौना अनिल मारूफ, तीसरी यकबिदून अईदियहुम, और चौथी नसुल्लाहा। यहां तक रुक के कहेंगे कि यहां तक मुनाफिकत की अलामतें हैं। अल्लाह इनके साथ क्या करेगा? नंबर एक, फनसियहुम, इनको अल्लाह बुला देगा, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इन्होंने किया अल्लाह इनके साथ कर देगा। नसुल्लाह फनसियहुम, एक ही टोन में बात। दूसरी बात, इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, मुनाफिक ही फासिक है, ये पांचवी सिफत है। अगर इस एक आयत का ब्रेक डाउन करें ना तो हमें यहाँ मुनाफिकों की पांच सिफात मिली। नंबर एक, या मुरून बिल मुनकर, कैसे? मुनकर क्या होता है? नकीरा से, जो चीज इंसान के लिए अजनबी हो, जिस चीज का अकल और शरीयत इनकार करे। मुनकर, पीछे भी बात बहुत दफा हुई लेकिन यहां चूंकि लफ्ज आ गया सामने तो इसको सामने खोल के देख लेते हैं। मुनकर कहते हैं हर वो चीज जिसका तबीयत, फितरत, शरीयत और अकल इनकार करे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। अगर आप गौर से देखें ना तो तबीयत के एतबार से अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत में अच्छी चीज़ों को रखा हुआ है। किसी को भी शराब अच्छी नहीं लगती, सच बोलना हर मजहब में इन है। वक्त की पाबंदी, वादे को निभाना, ये सब शरीयतों में एक जैसा है, और इसका अपोजिट शराब, झूठ, जुआ, गैम्बलिंग, ये सबको बुरी लगती है। तो आप कह सकते हैं कि मुनकर मुफअल का वजन है, हर वो चीज़ जिसका इनकार किया जाए। मुनकर दो तरह से होता है, मुनकरे शरई, वो जिसका शरीयत इनकार करे, और दूसरा होता है मुनकरे अकली, वो मुनकर जिसका अकल इनकार करे। अमूमन तो ये दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि हमारी शरीयत में हर वो चीज़ नापसंदीदा है जो अकल को भी नापसंदीदा लगती है, लेकिन कभी कभी अकल बड़ी होशियार होती है। जिस चीज को शरीयत मुनकर कहती है अकल उसको मारूफ कहने लगती है। तो आप कह सकते हैं कि शर्त के साथ है। मसलन आप देखिए कि जैसे आप कहें रोज़ा रखना, शरीयत इसको पसंद करती है ना, लेकिन अकल हो सकता है लॉजिक्स देने लग जाए, ये तो जुल्म है, 12 घंटे का रोज़ा, 20 घंटे का रोज़ा, प्यास लगेगी, सर में दर्द शुरू होगी, माइग्रेन होगी। तो अब अकल तावीले सिखा रही है रोज़ा ना रखने की। सेम यही चीज़ मारूफ है, मारूफ वो है जिसे शरीयत पसंद करे और अकल भी पसंद करे, मारूफ है शरई और मारूफ है कह सकते हैं कि अकली, लेकिन अकल को बहरहाल परखा जाएगा। सूरत मुनाफिकून की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुबहान तआला ने मुनाफिकों का एक जुमला लिखा है, हुमुल लजीन यकूलून ला तुनफिकू। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि तुम ना तो रसूल पे खर्च करो और ना उनके साथियों पे, यहाँ तक कि ये लोग बिखर जाए। पिछली आयतों में हमने ये सब कुछ पढ़ के देखा कि मुनाफिक जो होता है उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल से वाजबी सी मोहब्बत होती है, अल्लाह से बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, रसूल से नहीं होती, लिहाजा वो रसूल पे एतबार नहीं करता। तो रसूल की ज़िंदगी का मिशन क्या है? या मुरूना बिल मारूफ। मुनाफिक अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला इशू क्या बनाता है? या मुरूना बिल मुनकर। लिखिए ज़रा इस जुमले को और उसके बाद आज के पूरे मीडिया को देख लें, आज कैसे इज्तमाही तौर पे मुनाफिकत को तरवीज दी जा रही है, मुनकर को आम किया जा रहा है। हमारे अखबार, इवनिंग स्पेशल्स, ख़ास तौर पे डाइजेस्ट, वीकली स्पेशल्स, फलां फलां स्पेशल फलां, सच बताइए क्या या मुरून बिल मुनकर है कि या मुरून बिल मारूफ है? ठीक है, मीडिया एक नेमत है, अल्लाह ने टीवी चैनल्स दिए, ये अल्लाह की एक नेमत है। क्या अमूमी तौर पे वहाँ मुनकर के हुक्म मिल रहे हैं कि मारूफ के? गलत चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है कि सही को? निकाब और हिजाब को वहाँ प्रमोट किया जा रहा है या स्लीवलेस और अदाएं दिखाती हुई सिस्टर्स को? सबको पता चल रहा है। तो आप बता सकते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा की सोसाइटीज क्या मुनाफिक सोसाइटीज़ हैं या मोमिन सोसाइटीज़ हैं? देखिए, एक निफाक होते है अकेला निफाक, पर्सनल, मेरा आपका अपना, इट्स माई बिजनेस, तुम्हें क्या, तुम छुट्टी करो। सूरत तौबा में आपको जो मुनाफ़कत दिख रही है ना, ये इज्तमाई मुनाफ़कत है। आप कह सकते हैं कि शुरू में एक शख्स मुनाफिक बनता है, कोई जरासीम उसके दिल दिमाग में आ जाता है, जब वो उसका इलाज नहीं करता बल्कि अपनी बीमारी का तذکرہ दूसरे से करता है तो वो दूसरे में आ जाए, कंटेजियस है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलता है और एक वक्त आता है कि पूरी सोसाइटी में निफाक की वबा फैलने लगती है। फिर लोग बुरा समझते हुए भी उस काम को बुरा नहीं समझते, उसके खिलाफ कलम उठा सकते नहीं उठाते कि लोग दुश्मन हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, वयन हौन अनिल मारूफ, आपको इसकी दलील मिलती है आज के दौर में कि लोग मारूफ से कैसे रोकते हैं? ऐसे लगता है नेकी का काम करना, नेक लोगों का साथ देना, ये सब मुनकर है, तौबा करो। नहीं नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हो जाओगे, नहीं नहीं भाई, अपनी ज़िंदगी बसर करो। यानी बास दफ़ा आप देखिए कि जुमले, इस तरह के सेंटेंसेस मुंह से लोगों के निकल जाते हैं कि जो लोगों को मारूफ से रोक लेते हैं, ये तुमने अपना हाल क्या बना लिया, ये तुम्हें क्या हो गया, तौबा करो, तुम्हें तो देख के रोना आ रहा है। किसी ने अपना वाक्या सुनाया कि कहीं बैठी थी तो सिस्टर्स की गैदरिंग थी, तो एक सिस्टर दूसरी सिस्टर जो दोनों बड़ी उम्र की थी बात करी, कहती है अच्छा सुनाओ अब तुम्हारे बेटे का अब क्या हाल है? तो कहती है कि मैं ये समझी कि अल्लाह ना करे इनके बेटे को कोई बीमारी है, कुछ हो गया, दिस एंड दैट, तो ये उनका हाल पूछ रही हैं। तो जो दूसरी खातून बड़ी उम्र की थी कहती अल्लाह का शुक्र है अब वो पहले से बहुत बेहतर है। कहती मुझे सस्पेंस हुआ कि मैं पूछूँ कि अल्लाह रहम करे क्या बीमारी हो गई थी बेटे को इनके जब हुए, तो मैंने कहा कि क्या हुआ था इनके बेटे को? कहती अरे क्या बताएं, बाहर पढ़ने भेजा था, वहाँ किसी ग्रुप का साथ मिल गया, इसको कोई इस्लामिक ग्रुप था, तो वहाँ से इतनी लंबी दाढ़ी रख के आ गया और आके अपनी बीवी को कहता है हिजाब करो। तो अब तो शुक्र अल्लाह का मैंने कह कह के दाढ़ी तो कटवा दी है और अब बीवी पे भी सख्ती नहीं करता, यानी अब ये इस्लाम के फोबिया से जरा निकल आया। अब बताइए ऐसे माहौल में जहाँ मारूफ पे इतने यनहाउन हो, तो कौन है जरूरत वाला, हिम्मत वाला निकलेगा? आओ फिर करो जो करना है, करो जो कहते हो, जब तुम्हें नहीं शर्म आती बगैर कपड़ों के निकलते तो मुझे भी छुपाते हुए शर्म नहीं आती। आज बहुत सारे लोग, याद रखिएगा, इस बात पे नेकी से रुके हुए कि वो फेस नहीं कर पाते, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या, लोग और नाम बनाए हुए, ये तुम क्या तबलीगिया बन गए हो, ये तुम के मुल्ला बन गए हो, ये जुमले क्या हैं? बिलीव मी कि आज इतने लतीफ़े जो मौलवी के नाम पे हैं, इतने किसी शराबी और कबाबी पे भी नहीं होंगे। मौलवी का पेट, मौलवी की ज़ुबान, मौलवी का हुलिया, उसका हलवा, दो मौलवियों के बीच में मुर्गी, ये क्या है जुमले, कभी आपने सोचा? ये सिर्फ यही कुछ है जिसका ये बात है कि दीन और दीन वालों को बुरा कह दो ताकि लोग जुरत ना करें। सच बताएं, आप सब सिस्टर्स हैं ना, सुबह सुबह उठ के आती हैं, घर से आई, इधर आई, अगर एक बंदा सुबह उठ के इतना अच्छे तरीके से ड्रेसअप ना भी हो सके, कंघी भी ना कर सके, उसके लिए तो इस्लामिक अटायर एक नेमत है। आप सुबह जल्दी में घर से निकल आई, निकाब अगर आपके चेहरे पे, तो अगर आपने मुंह भी नहीं धोया हुआ तो आप रिलैक्स है ना, है कि नहीं? कि चलो भी वहां जाएंगे जहां मौका मिला, क्या हुआ, और सारा दिन निकाब में बैठना है, बाल भी नहीं खोले, कोई बात नहीं, कंघी घर जाके कर लेंगे, रिलैक्स है ना। लेकिन इस रिलैक्सेशन को छोड़कर हम अपना गेटअप क्यों सही करना पा जाते हैं कि निकाब में तो 10 लोग मुझे देखेंगे, तो निकाब तो नहीं करना। तब नहीं करना तो उसके ऊपर कितने मसले। एक सिस्टर है, उन्होंने जब नया नया हिजाब और ये अबाया किया, कहती मुझे अब पता चला कि इसमें कितनी खैर है, फिक्र ही कोई नहीं है, 2 मिनट में उठ के तैयार है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रही हूँ कि इमरजेंसी के लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपके कितने ऐप, कितनी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन सिर्फ बातों के डर से लोग ये काम नहीं छोड़ते। और एक और बात नोट कर लें आगे भी, चूंकि मोमिनों की सिफात में इन सारी सिफात का ऑपोजिट आना है, तो आप इसको अभी से सामने रख लीजिएगा कि किसी को आप नेकी का हुक्म देते हैं ना, इट्स क्वाइट इजी। आप किसी को कहेंगे ना नमाज पढ़ लो, बुरा तो मानेगा कि क्या मेरे मामले में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं मानेगा। आपके बेटा इस साल आपने पूरे रोजे रखने हैं, ओके अम्मी आई विल डू इट। आप शोहर साहब से कहती हैं कि देखें अब आप जरा सदका खिरात थोड़ा दिया करें और अल्लाह की रहमत आती है, कहेंगे इट्स फाइन नो प्रॉब्लम, डूज नो प्रॉब्लम। मसला सबसे बड़ा आता है डोंट्स पे, वो जैसे कहते हैं दुखती रग पे पाँव नहीं लगता, चिलचिला ही उठते हैं, ऐसे लगता है बिजली के तार को छू लिया, जब आप यन हो ना निल मुनकर करेंगे। मैंने एक जगह एक जुमला बोला और एक सिस्टर ने वहां आई हुई थी, बाद में कितने अरसे बाद मिली, तो मुझे कहती मुझे इस एक जुमले ने बहुत कुछ सिखा दिया कि 100 नेकियां करनी आसान है लेकिन एक गुना छोड़ना मुश्किल है। मसला आप किसी से $100 या 100 पाउंड 2 मिनट में डोनेट करवा सकते हैं, क्या 100 पाउंड ही है ना, लेकिन उनसे कहे ना कि $1 या 1 पाउंड हराम का इस कमाई से निकाल दें, ये अच्छा नहीं है, तो इस पे चीड़ने लगेंगे, तुम्हें क्या पता मेरी क्या मजबूरियत है, मैंने सब छोड़ दूं, फिर देखेंगे कहाँ से खाएंगे, फिर देखेंगे ये मस्जिदें कैसे बनेंगी। यानी वो सोचते हैं अगर हमने अपनी कमाई में ये 1-2-4% हराम ना डाला ना, ना मस्जिदें बननी है, ना मदरसे चलने हैं, और हमारे बच्चे तो बेचारे भूखे ही मर जाएंगे। बिलीव मी, आज भी अगर आप गौर करके देखें ना मुसलमानों को, गैरों को तो छोड़ दें, हम उनकी बात भी नहीं करते, हम तो उनके लिए सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अपनी पहचान दे दे। आज भी जिन मुसलमान भाई बहनों के काम धंधे में कोई गड़बड़ है, वो 100 में 1-2% है, 20% तो बहुत दूर की बात है, 2-3% से ज्यादा नहीं है, लेकिन शैतान इतना धोखा डालता है, वो कहता है यही 1-2% तेरा सारा प्रॉफिट है, ये नहीं पता कि उसकी बुनियाद पे कितना हलाल छूट गया, कितनी बरकत चली गई, कितने फरिश्ते चले गए घर से, रहमत के फरिश्तों पे बाढ़ पड़ी। आगे आप पढ़ेंगे अल्लाह की रहमत की बातें। तो ये एक निफाक का कल्चर है आज जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। आप किसी जगह देखें इंटरेस्ट का रेशियो 2-10-15-10, मेरा नहीं ख्याल 20% से ज्यादा हो। कभी आपने कभी कोई कंपनी या बैंक देखा जो आपको कहता है आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम आपको 90% इंटरेस्ट देते हैं, तो वो तो खुद फ्लॉप हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। है चंद परसेंट, लेकिन निफाक की वजह से ये चीज छूटती नहीं है, गलत करता है। और ये जो लफ्ज है ना या मरून, इसको लिखिए, ये आगे भी आना है, इधर भी आना है, तो सब साथ ही हो रहे हैं इकट्ठा, कि या मरून के अरबी जबान में 3 मानी होते हैं। जब कभी जिंदगी रही और आपके नसीब में वह ग्रामर पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, तो आपको ये फेले अमर में लिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ तफसीर में ये 3 मानी आएंगे इंशाल्लाह। पहला मानी होता है इसका हुक्म देना, यानी आपके हस्बैंड कहते हैं डू इट, अब आप कहते हैं ये तो मेरे लिए हुक्म है, ठीक है, या आपको कहता है डोंट डू दिस, तो ये नहीं हो गया। पहला मानी हुक्म होता है। दूसरा मानी होता है मशवरा, यू शुड डू इट प्लीज। अब कभी कभी आपके हस्बैंड कहते हैं चाय बना दो, तो आप सोच में पड़ जाते हैं हुक्म दिया, हो सकता है उन्होंने मशवरा ही दिया हो, कहते यू शुड डू इट, है फर्क है ना। तीसरा एक इसका इससे भी लीनियट मानी होता है हौसला अफजाई करना, इफ यू डू इट आई विल लाइक इट, ठीक है। मुनाफिक या मरून अबिल मुनकर में ये तीनों काम करते हैं, हालात और मौके की मुनासबत से, कभी तो वो जब हुक्म दे सकते तो हुक्म दे के गुना करवाते हैं, और हाथ सर पर अल्लाह हिदायत दे बीवियों को शोहरों से करवाती हैं, और अल्लाह हिदायत दे शोहरों को वो बीवियों से कराते हैं, और ससुराली रिश्तों में ये एक ऐसी बारगेन होती है कि ना किया तो हम तलाक दे देंगे और घर भेज देंगे। कभी कभी निफाक मशवरे के तौर पे होता है, और लिख लीजिए हुक्म वाला निफाक बहुत थोड़ा है। किसकी जरूरत है कि आपको हुक्म दे के ये गलत करो, मशवरे भी थोड़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यामुरून बिल मुनकर जो होता है ना, ये हौसला अफजाइयों का है। माशाल्लाह, व्हाट यू आर लुकिंग डैशिंग, क्या सेटअप है, क्या शक्ल है, क्या सूरत है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जो हौसला अफजाई वाला यामुरून बिल मुनकर है ना, इसने आज हमें तबाह बर्बाद कर दिया। इसी का बदला हुआ नाम बतर रिया है, दिखावा है, शो ऑफ है। हम सिर्फ इन हौसला अफजाइयों की वजह से गुनाह करते हैं। हर एक अपने आप से पूछे, क्या मैं या मरूना बिल मुनकर में तो नहीं आती? क्या मैं बुराइयों के हुक्म तो नहीं देती अपने बेटों को, बेटियों को, शोहरों को, जो भी जिसको भी कोई देता हो, बीवी को? क्या मैं बुराई को प्रमोट तो नहीं करती? क्या मैं बुराइयों के मशवरे तो नहीं देती? चलो ना, कोई बात नहीं, एक घर ले लेते हैं, खैर है ना बेगम? चले आप एक घर ले लें, फिर खैर है, मशवरे तो नहीं देते हम? और सबसे बढ़ के, क्या मैं बुराई के मामले में बुरे काम करने वालों की हौसला अफजाई तो नहीं करती? यकीन करें, हाथ ठंडे होते हैं। ये चीजें हैं जो कुरान पढ़ने से रोकते हैं। ये चोट ना तो कुरान खानी की महफिल में पड़ती है दिल पे, जहाँ सिर्फ आप कुरान के 30 पारे 2-3 दफा पढ़ के बाद में दुआ करके लंबी सी और मजे का खाना खाते हैं, और ना ये चोट आपकी मिलाद शरीफ में होती है, और ना दरूद तंजीना में होती है, और ना 7 मुबीनों के साथ सूरह यासीन पढ़ने में होती है। ये वजह है कि ऐसे काम करवाने वाले लोग ज्यादा दिखेंगे। ऐसे दिल जिनमें रोक होता है ना, वो अपनी खुशी गम के मौके पर ऐसे काम करा लेंगे, खाना पूरी। चलो अब ये आइटम भी तो डालना है ना अपनी जिंदगी में, कि अपने काम से पहले अल्लाह का काम किया, शादी की शुरुआत की है अल्लाह के नाम से की है, बुलाओ मस्जिद से 100 बच्चे, वो कुरान पढ़े, हम उनके लिए खाना पकाते हैं, बाद में शरीनी बांट देंगे, खत्म। चलो लाओ जी अपने रस्में शुरू करते हैं। ये वो कुंद छुरियां हैं जो आज हमारी सोसाइटी को काट रही है। इसलिए हम सब अपना मुहासबा करें, हम इसी सोसाइटी में। और अगर ये कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब होता तो ये आयतें क्यों आती? अगर ये किताब सिर्फ और सिर्फ चूमने और चाटने और जिन्नों बुतों को भगाने के लिए आता, 22.5 साल अल्लाह के नबी को क्यों मुश्किल में डाला गया? ये थी वो सोसाइटी जिसमें अल्लाह के नबी जीते थे और आप पे बातें होती थी। आज अगर मेरे और आप पे 4 बातें को कर ले, 100 बिस्मिल्लाह, खुशी से करो और करो। कुछ तो नबियों की सुन्नत हमारे ऊपर भी लागू हो, हमारे भी तो जन्नत में जाने का कोई सबब बने ना। तुम ये बातें करोगे तो हम अल्लाह को हम पे रहम आएगा ना। फिर आप देखिए, जो यक भी दून का लफ्ज़ कह के अल्लाह ने छोड़ दिया, आई दिया, अपने हाथ रोक के रखते हैं। किस चीज से हाथ रोके रखते हैं? जनरल मानी वही है जो मैंने आपको तर्जमे के साथ बता दिया, कि अल्लाह के रास्ते में खर्च से रोक लेते हैं। जहां खर्च होता है जात पे, नाम पे, शोहरत पे, लाखों, और अगर अपने मुल्क की लैंग्वेज बोल दें तो करोड़ों। कहते हैं अब तो पाकिस्तान में करोड़ों के सिवा बात ही नहीं होती। आप 4-6 पैसे जमा करके ले जाए ना, वहां बड़े फन्ने हाँ बनते हैं, बड़े पैसे हैं, वहां जाके पता चलता है वो चंद लाख भी नहीं बने। वो कहते हैं इसका क्या आता है, कोई ग्रोसरी की क्या, वो क्या कहते हैं, पंसारी की दुकान नहीं खोलता, आप इस पैसे से किसी की क्या मदद करने वाले हैं? रियली ये हालात है। लेकिन जब अपनी जात से ऊपर हट के एक बहुत बड़ी जात जिसने सब कुछ दिया उसके रास्ते में आता है तो हाथ रोकते हैं, हाथ नहीं खुलता। कहते हैं तौबा करो, अभी बच्चों की शादियां, अभी घर, अभी घर, कितने तो मसले हैं। अच्छा, मजे की बात पता क्या है, कि इंसान अपने दुख सुख के लिए कुछ खर्च रख लेता है और इस्लाम का दुख सुख उसको अजीज नहीं होता, वाकई उसको कोई फिटीक पड़ जाती है। मिसाल देती हूँ सिर्फ एक सपोज केस लेकर, ताकि अगर हम में से किसी का ऐसा मामला है तो हमें अल्लाह ताला सीधी समझ दे दे। देखिए, हर एक के पास अपनी ज़रूरियात के बाद कुछ ना कुछ तो बचता ही है, और बचना चाहिए, इसमें कोई मना नहीं है। इस्लाम ना सेविंग से रोकता है, तभी तो ज़कात है। अगर सेविंग जायज़ ही ना होती, 1 साल तक रख ही नहीं सकते, तो कहता जहां साल से कोई 2-4 महीने कम हुए तो सारा खर्च कर दो अल्लाह के रास्ते में या अपने में। ऐसी कोई बात नहीं है, खर्च करवाता है और इस्लाम रखवाता भी है, ये तकवा के खिलाफ भी नहीं है। एक बड़े मकसद के लिए अगर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन असल मसला क्या है, सेविंग का मकसद क्या होता है भला? कि जब कभी को जरूरत पड़ी तो काम आएगा ना। बड़े काम जो आउट ऑफ द रेगुलर थिंग्स है, कोई हमारी जुबान में किसी की शादी ब्याह है, पाकिस्तान जाना पड़ गया, हज और उमरे के लिए रखते हैं ना, अब आप सोचिए कि एक कोई भी कपल है, उसने 10,000 जमा किए हुए हैं किसी मतवक्के खर्चे की नीयत से। अभी वो खर्चा आया नहीं, उसका वक्त आया नहीं, या जो भी हालात और असबाब नहीं है, इससे पहले इस्लाम को ज़रूरत पड़ गई, ये इम्तिहान है बस। आप करोड़ों भी अपने बैंक में रखें ना, अगर उस पर आपने ज़कात दी हुई है, वो कंस नहीं है, तो इंशाल्लाह वो खैर है। लेकिन वो करोड़ों नहीं, लाखों ही बैंक में पड़ा हुआ है, और इस्लाम पे किसी वक्त ज़रूरत पड़ गई, वो अब आपके लिए जवाबदेही का सबब है। फिर कह ले कि आपके स्टेटमेंट्स खुल जाएंगे अल्लाह के आगे, फरिश्तों लाओ इसकी स्टेटमेंट, इसने इतना रखा हुआ था और मेरे दीन में इतनी ज़रूरत थी, ये इधर था। अच्छा आप कहते नहीं, इसलिए रखा हुआ है कि खर्चा ना आ जाए, और आपने यक भी दून आई दिया हम कर दिया, अल्लाह ना करे, वाकई देखिए 1-2 महीने बाद एग्जैक्ट 10,000 का खर्चा आ जाता है। वो फिर बेगम जो कह रही थी ना दे दो, तो मियाँ साहब कहते थे ना दो, वो कहते देखा तेरी बातों में आके अगर मैंने ये फलां मस्जिद में दिया होता और फलां दीन पे दिया होता ना, आज क्या करते। अब आप अगर बेचारी मासूम सी बेगम कहते वाकई तुसी तो बिल्कुल सही कहते हो, ताड़ा ते तजर्बा ही बड़ा है, लेकिन तुसी बिल्कुल नहीं सही कहते, ये 10,000 की फिटीक पड़ी क्यों, यक बिदून ऐ दिया हम के जुर्म में। वो माल जो हम अल्लाह से बचाते हैं ना, वो किसी जगह निकल जाता है। फमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम, अगर आपने उस वक्त इस्लाम की जरूरत पूरी कर दी होती ना, तो ये जो आपकी गाड़ी की टक्कर हुई और 10,000 का बिल आ गया, वो नहीं थी होनी। टक्कर हुई इसलिए कि फरिश्तों मुझे पता है इसके 10,000 पड़े हैं, लगवाओ इसके जल्दी से, नहीं तो फिर ये चोरी ही हो जाना है, कहीं चोरी हो जाती है। फिर वो कहते हैं हाय मैं दे ही देता तो अच्छा था, ये माल तो जाना ही था, इससे पहले दिया जाता। हदीस में आता है कि क्यामत के करीब ज़मीन में से सोना निकलेगा, इस तरह ढेरियाँ लगी होंगी ज़मीन पे सोने की, मिसालें जैसे नमक की ढेरियाँ होती हैं, और चोर उसके पास से गुजरेगा और उसका हाथ कटा होगा, और वो उस माल को देखेगा, काश मैंने थोड़ा इंतज़ार किया होता और मैं अपना हाथ ना कटवाता इस माल की वजह से। तो यक बिदू न ए दिया हूँ, अल्लाह अकबर, बड़ा सख्त इम्तिहान है। माल आपके पास पड़ा है, नो प्रॉब्लम, खुश हो, उसको देखें, उसको जो भी करें, लेकिन प्लान बनाया करें, इसको री इन्वेस्ट करें। रखा रहेगा ना तो निफाक बढ़ेगा, दिल के अंदर बोझ बनेगा। मुनाफिक को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए तकलीफ होती है इतना, और ख़ास तौर पे आप देखें जब ज़कात ही के पैसे को आप पाकिस्तानी रुपयों से ज़रब तो दें, तो चीखें निकल जाती हैं। अपना जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ की कीमत देंगे 100-200 का है, बाद में पता चलते वो पाउंड है, और जब ज़कात देते हैं तो वो उधर की करेंसी लगा के कहते हैं इतने लाखों तो ज़कात देते हैं। अच्छा इतने लाख पाउंड है, नहीं रुपीज़ है, ये हालात है हमारे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह माल दे, लेकिन माल की मोहब्बत ना दे, और दूसरी ये दुआ किया करे कि अल्लाह माल मेरे हाथों में रहे, मेरे दिल में ना रहे। दिल में कैसे रहता है, बैंकों और लकरों में, हाथों में क्या इस्तेमाल कीजिए, है तो पहनिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो तमा ना करें, और अगर नहीं है तो हिर्स ना रखें, जो भी है ठीक है। तो बहरहाल मुनाफिक को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुश्किल लगता है। इसका एक दूसरा मानी भी नोट कीजिए, यक बिदू नई दिया हम हाथों को किस चीज़ से रोकते हैं, जिहाद से रोकते हैं, और मेरे और आपके टैक्स में क्या, अल्लाह के रास्ते में मेहनत से रुकते हैं। तलवार तो वही पकड़ेगा ना जो झाड़ू पकड़ेगा, तलवार चलाते हुए भी तो झुकना पड़ सकता है ना, तो वैक्यूम पे फिरते हुए भी तो झुकना पड़ सकता है ना। यानी मुनाफिक अल्लाह के रास्ते में मेहनत मुशक्क़त यानी जिहाद से रुकता है। फिर तीसरा रुकना क्या, दीन से ही रुकता है, वही शुरू वाला हिस्सा आज के सबक का, कि ना जाओ ना सुनो ना ये पोल खोलो और ना ये कड़वी बातें सुन के पसीनों पसीन हो जाओ, ये ना करो। फिर इसका चौथा मानी भी है कि वाजिब हकूक की अदायगी से रुकते हैं, यानी फराइज नहीं पूरे करते, हकूक मांगते हैं, इनके जिम्मे जिनके हकूक होते हैं वो नहीं देते, और किसी के जिम्मे हैं तो उनको देते हैं, हाथ नहीं खुलता इनका अल्लाह पे। अब एक सवाल उभरता है यनहौन अनिल मारूफ पे, कि क्या मुनाफिक खुलेआम जुबान से कहते हैं कि नेकियां ना करो, समझ आ रही है। अब ये अब अगले एंगल पे आ गए ना हम, कि यनहौन अनिल मारूफ, क्या मुनाफिक खुलेआम जुबान से रोकते हैं कि नेकी ना करो, तो इसका जवाब है कि नहीं, मुनाफिक इतना बेवकूफ़ नहीं होता। दुनियावी एतबार से मुनाफिक एक्स्ट्रा क्लेवर होता है, जैसे वो कहते हैं ना, बाल निकाल के ले जाओ आटे में, सर खबर भी ना हो, दीन पे उसकी अकल नहीं चलती। फिर कैसे रोकते? हम दर्द बनकर रोकते हैं, डिस्करेज करते हैं नेकी करने वाले को, रहम खाते हैं दीन का काम करने वालों और दीनदारों पर तनकीद करते हैं। इस तरह के हालात वो उनकी जिंदगी में होते हैं कि वो अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगें कि शायद हम ही ना काम है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल में दीन की सच्ची मोहब्बत दे दे। इस तरह के काम अल्लाह हमसे ले ले अपने दीन के, कि जिसमें हम भी खुश और अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाला भी खुश। अल्लाह ताला ने यहाँ यही कहानी हमें बता के अपने मुहासबे की फिक्र लगा दी, कहीं नसुल्लाह वाली कैफियत तो नहीं। इसको भी पूछ लीजिए अपने आप से, मुनाफिक कैसे अल्लाह से रुकते हैं, अल्लाह के रास्तों को भूले होते हैं, और याद ही नहीं रहा, नमाज का वक्त निकल गया, अरे भूल ही गए। अच्छा वादा किया था कोई नेकी करेंगे, ओ मैं तो भूल ही गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा, ये भी था, बड़े शद्दो मत से एक वादा किसी को दिलाएंगे, उम्मीद दिलाएंगे, ये काम करेंगे, बाद में कहेंगे ओ हम तो भूल गए। और नसीहत हूँ, अल्लाह उनको कहाँ भुलाएगा। अब इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर एक, दुनिया में अल्लाह भुला देता है। दुनिया में अल्लाह मुनाफिक को कैसे भुलाता है, वो ही याद कर लीजिए सूरत अलानाम के किस्से। फलम नसू मा ज़ुक्किरु बिही लफतहना अलैहिम अबवाब कुल्ला शयइन। अल्लाह मुनाफिक पे मुश्किलें नहीं डालता, इब्तदा में नेमतें, सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती, तारीफें, ग्लैमर, हर तरफ से डंके बज रहे हैं उसकी शोहरत के, लोग भी तारीफें कर रहे हैं। लग ये रहा है कि अल्लाह इसके गुनाहों के बावजूद इसको दे रहा है, गोया कि अल्लाह इसको भूला हुआ, लेकिन वह भूल नहीं होती, पकड़ होती है, अल्लाह ताला ढील दे रहा होता है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के भूलने का दूसरा मरहला, जब उनकी ढिटाई के बावजूद उनसे नेकियां नहीं होती, तो अल्लाह उन पर कोई मुश्किल डाल देता है, फिर भुला देता है। पढ़ो अब इस मुश्किल में, देखिए आपका बच्चा आप गलत बात करे ना, आपकी बात ना माने, शुरू में माँ बड़े प्यार से समझाती है, चल आ खा ले, चल मेरा बच्चा, चल चल चल, बच्चा ज्यादा ही चौड़ा हो जाता है ना। आप बच्चे को कुछ चीजें देती हैं, ये ले लो, ये कर लो, ये खा लो, तो आप सोचते हैं कि ये सब सुन खा पी कर लेकर इसका दिल मेरे से खुश रहेगा तो मेरी बात मानेगा, फिर बच्चा नहीं मानता, खाना ही नहीं खा रहा, आप ये बनाती हैं वो बनाती हैं, कुछ भी नहीं खा रहा। फिर अगला स्टेप माँ का क्या होता है, जॉब नहीं तो ना से, फिर पढ़े रहो। फिर ये दूसरी तकलीफ होती है, अल्लाह ताला फिर भुला देता है, फिर वो कहते हैं हाय मेरे किस गुनाह की सजा है, अल्लाह कहते हैं मैं तो बात ही नहीं करना चाह रहा, खुद सोचो, अपनी अकल इस्तेमाल करो। फिर इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला ऐसे शख्स को मौत की सख्तियों में भुला देते हैं। बस वह मौत की जो सख्ती आती है ना, ये गुनाहों के कफारे होती है। अगर निफाक का रंग इतना गहरा नहीं है ना, तो अल्लाह अपनी तौफीक और रहमत से नजा की सख्तियों में निफाक को निकाल देता है दिल से, क्योंकि हकीकत सामने है। फिर इसी तरह अल्लाह सुबहाना तआला ऐसे शख्स को कहाँ भुलाएंगे, कब्र में, आग लगी है या कुछ भी है या कब्र भिछ रही है, अल्लाह इतना बेनियाज बन जाता है कि उसको परवाह ही नहीं रहती कि बंदे को कितनी तकलीफ हो रही है। फिर अगला मरहला ये कि अल्लाह मैदाने हशर में खड़ा करके भुला देगा। आप वाक़यात सुने कभी क़यामत के बयान के, तो उसमें साफ आता है कि लोग खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, हिसाब ही कोई नहीं शुरू हो रहा, इतना थक जाएंगे 50,000 साल जितना लंबा दिन है, खड़े हैं खड़े हैं, अल्लाह खिड़की नहीं खोल रही हिसाब किताब की, हद तक के फिर लोग आके कहेंगे कि अल्लाह के नबी से कि आप जाके हिसाब की सिफारिश करें, सारे नबी इनकार कर देंगे जाने की, कि मैं आज अल्लाह से डर लग रहा है, हमने एक झूठ बोल लिया था इस वजह से, मैंने अपने मुशरिक बेटे के लिए दुआ कर दी थी इस वजह से, एक गुनाह जिसको अल्लाह ने माफ़ किया हुआ है तभी तो नबुव्वत दी ना, उसके बावजूद क़यामत के दिन नबियों अल्लाह से डर रहे होंगे कहीं आज फिर पिछला हिसाब ना पूछ ले, और बिलाखिर अल्लाह के नबी जाके सिफारिश करेंगे और हिसाब को लेगा। इसको शिफाते महमूदा कहते हैं, मुकामे महमूद जो है अल्लाह के नबी को मिलना। और इसी तरह फिर इसके अगले मरहले में कुछ मुनाफिकों को अल्लाह जहन्नुम में गिरा के भुला देंगे, ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں چھٹے پارے کے اینڈ پہ. منافق جہنم کی سب سے گہری وادیوں میں ہوں گے, کھائیوں میں ہوں گے. جیسے کوئی روٹی بھول جائے نا تندور میں لگا کر, تو کیا حال ہوتا اس روٹی کا. وہاں منافقوں کا یہ حال ہوگا, ان کا سب نفاق جلے گا, پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو نکال لیں گے بعد میں. ان المنافقین فہم الفاسقون, اور منافق جو ہے نا اصل میں یہی نافرمان ہے, ریبیلیس, ٹرانسگریشن, فسق ہے. دیکھیے ایک گناہ ہوتا ہے بھول بھال کا, ایسے ہی پاؤں پھسل گیا, اللہ اس کو نفاق نہیں کہتا. لیکن وہ گناہ جو جان کے پلان کر کے کیا جائے وہ اللہ کو برا لگتا ہے.